या फिर लगाते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। तो आज कौन सा कार्यक्रम है हमारा यहाँ पे? हाँ जी, रामनवमी। ओके, और कोई जानते हैं क्या उत्सव है आज, क्यों आज हम विशेष संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? आनंद उत्सव। तो आनंद उत्सव में ऐसा लग रहा है आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा है, है? आनंद उत्सव में तो आनंद आना चाहिए। हमारे द्वारका में एक भक्त है, उनका नाम है आनंद प्रभु, हमारे क्लास में आते हैं। तुम कहते हैं कि चाहे हरि नाम से आनंद आए ना आए, लेकिन एक डिवोटी आनंद है, उनके आने से आनंद तो आ ही जाता है, क्योंकि आनंद तो है वहां पर। तो आप भी चाहते हैं तो आनंद को डिवोटी को बुलाना पड़ेगा या आपको आनंद आएगा? तो भगवान का आनंद कब आता है? जब हम भगवान राम के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि राम का अर्थ ही है क्या? आनंद प्रदान करने वाले। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, मोस्ट अट्रैक्टिव गॉड इज कृष्णा, एंड वन हु गिव्स द प्लेजर टू द पीपल, जो लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, उन भगवान का नाम क्या है? राम। इसलिए अगर हम राम बोलते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो राम प्रसन्न होते हैं, जब हम राधे राधे बोलते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? कृष्ण प्रसन्न। जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। प्रभुपाद ने बोला, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। इसको बोलने से राधा रानी भी प्रसन्न होती हैं, कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और राम भी प्रसन्न होते हैं, ठीक है? और आप भी प्रसन्न होंगे क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हम पहले कीर्तन करेंगे, कौन सा है? जय राधा माधव, ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वन चारी, यमुना तेरा, यमुना तेरा वन चारी, यमुना तेरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे सभी बोलिए
रामा हरे रामा हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे आप नहीं बोलेंगे तो आनंद नहीं आएगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जिनको भगवान ने दो हाथ दिए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलिए
रघुपति
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम जय रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन राजा राम पतित पावन राजा राम पतित पावन राजा राम पतित पावन राजा राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानि जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभुपा प्रभुपा नीतायो हरिभो
हरि बोल हरि बोल हरि बोल नेताई गौड़ा हरि श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री पंच तत्व गौर निताय की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे
हरे कृष्णा। तो उत्सव जो है आनंद उत्सव, उसमें उत्सव शब्द का अर्थ क्या है? उत्साहवर्धन करने वाला उत्सव, जिस उत्सव के कारण हमारे जीवन में एंथुसियाज्म उत्साह आता है उसको बोलते हैं उत्सव। और आनंद करने का उत्साह जब आए तो उसको क्या बोलते हैं? आनंद उत्सव। और आनंद कब आता है हमने बताया? कौन बोलेगा आनंद कब आता है? मन प्रसन्न होता है। मन कैसे प्रसन्न होगा? भगवान का नाम लेने से। तो भगवान के नाम और भगवान की कथा या भगवान का दर्शन, ये क्या करता है? व्यक्ति को जीवन में आनंद प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे, भगवान राम चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इसमें बताएंगे कि भगवान राम का जन्म कब होता है, कब होता है बताएंगे? हाँ, नौमी के दिन। तो बताते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजात मुहूर्ता। नौमी तिथि थी उस दिन। और क्या था? मधुमास पुनीता, उस दिन मधुमास था, जो ये मास चल रहा है अधिक ये जो मास चल रहा है चैत मास। और शुक्ल पक्ष, भगवान आते हैं कृष्ण पक्ष में, कृष्ण, और राम आते हैं शुक्ल पक्ष में। अभिजात मुहूर्त, मुहूर्त जो था स्पेसिफिक मुहूर्त बनाया जाता है। हम जब प्रकट होते हैं, हम जब मतलब पैदा होते हैं, प्रकट तो नहीं होते, प्रकट तो भगवान होते हैं, हम जब पैदा होते हैं तो हमारी कुंडली बनती है। बोलते हैं ना कि व्यक्ति जब जन्म लिया तो उसके नक्षत्र कैसे थे उसी समय लिख दिया गया, और जब वो मृत्यु होगी उसकी वो भी उसी टाइम लिख दिया गया। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जैसे मेडिसिन बनती है तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है? मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट। ऐसे हमारे ऊपर भी प्रोडक्ट पे लिख दिया गया, मिस्टर सो एंड सो विल लिव फॉर सो मेनी इयर्स, इतने सालों तक ये जीवित रहेंगे, फिक्स्ड है। लेकिन भगवान जो है वो उनका मैन्युफैक्चरर डेट नहीं होता, बिकॉज वो हमेशा से ही प्रकट होते हैं, है ना, प्रकट और अप्रकट, है ना। हमारा होता है पैदा होना और मरना, लेकिन भगवान का नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि भगवान राम और कृष्ण भी प्रकट हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं, पैदा हुए थे। भगवान पैदा भी नहीं होते और मरते भी नहीं है, भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्योंकि सारी सृष्टि भगवान के अंतर्गत कार्य करती है, तो जब भगवान प्रकट होने वाले होते हैं तो सारे नक्षत्र जितने भी ग्रह हैं, अनेकों ग्रह क्या करते हैं, अपने आपस में खलबली मच जाती है उनके अंदर। अरे पता है भगवान प्रकट होने वाले हैं, है ना। जैसे कंपनी में चेयरमैन आता है तो उस समय वो जो नीचे के एम्प्लॉयज है ना, वो ऑटोमेटिकली अरेंजमेंट्स करते हैं कि बेस्ट होना चाहिए, पुष्प बिछा दो इस प्रकार से कि उसमें भगवान चेयरमैन प्रकट प्रवेश कर सके। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने में सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं, वहां सारे ग्रह प्लानिंग करते हैं, बेस्ट करो ऐसा कि जिसमें भगवान को कोई भी तकलीफ ना हो। तो इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु और शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोलते हैं, सारे मिलकर भगवान राम और भगवान कृष्ण के जब प्रकट होते हैं तो उनके प्राकट्य में सारे जुड़े होते हैं उसके अंदर। देखिए कितना सुंदर है भगवान जब प्रकट होते हैं। और भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी हैं। कौन से वंशी हैं? हाँ, और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। भगवान क्यों सूर्यवंश में प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण क्यों चंद्रवंश में प्रकट होते हैं? तो जो लोग साइंटिफिक बुद्धि रखते हैं, साइंस जानते हैं, उनके लिए जब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो चंद्रवंश में प्रकट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का निजी स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? दिन पे दिन घटना। कभी वो पूर्णमासी को पूरा चांद होता है और फिर धीरे धीरे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, धीरे धीरे घटता है और अमावस तक आकर वो गायब हो जाता है और फिर उसके बाद दोबारा बढ़ना शुरू होता है। लेकिन जो सूरज है वो नित्य एक जैसा रहता है, है कि नहीं? इसीलिए भगवान जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपने उसूलों के ऊपर अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण को ये नहीं पता होता कल वो क्या करने वाले हैं, है ना। तो भगवान बोल देते हैं कि मेरे बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि अगले पल मैं क्या करूंगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखिए भगवान कितने अर्जुन से प्रेम करते हैं, जो कि उनके लिए क्या बन जाते हैं, सारथी बन जाते हैं। सोचिए भगवान नीचे बैठे हैं, आपको कोई बोला जाए कि प्लीज माता जी या प्रभु जी हमारा ड्राइवर बन जाइए, आप बनेंगे किसी डिवोटी का ड्राइवर? हो सकता है कोई सीनियर डिवोटी हो तो प्रभु जी छोड़ आते हैं, लेकिन उसके बाद टेंशन रहती है सेवा करने के बाद। कर्ता की भावना से रहित होकर हम सेवा ही नहीं कर पाते। तो देखिए भगवान कृष्ण आते हैं पार्थ सारथी बनकर, पार्थ के सारथी बनकर। और लेफ्ट जाना हो तो अर्जुन लेफ्ट में पैर मारते थे तो भगवान लेफ्ट को रथ मोड़ देते थे, राइट को जाना हो तो राइट को मारते थे और राइट को मोड़ जाता था, और रुकना हो तो क्या करते थे, पूरा का पूरा पंजा लेके अपना भगवान की पीठ पे मारते थे और भगवान तुरंत स्टॉप हो जाते थे। सोचिए जरा, इतना कष्ट उठाने को तैयार होते हैं भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं क्या हूं, भक्त के पराधीन हूं। सोचिए तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान नहीं टलने देते, अगर भक्त ने कह दिया कि कृष्ण या राम तुमको ये करना है तो भगवान उसको करते हैं। आप देखिए कि अयोध्या में भगवान राम को सिर्फ एक व्यक्ति ने बोल दिया था, क्या, इनकी जो स्त्री है वो तो कितने समय तक एक दूसरे पुरुष के पास रह के आई है। तो जब इस प्रकार से कहा गया तो रामचंद्र जी क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान राम ने तुरंत बोल दिया क्या कि देखो सीते, मैं तो तुम्हें नहीं निकालना चाहता हूं लेकिन समाज ऐसा चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सीता माता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया भगवान राम ने, उनका हाथ पकड़कर उनको लेके गई, और उनके जितने भी पूर्वज थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रघुकुल, रघु मतलब रघु राजा के वंशज, इश्वाकु वंश में हुए रघु राजा, उनकी ही सारी प्रजा को उन्होंने दर्शन कराया, किसने, सीता मैया ने, और कहा देखो राम, ये सारे लोगों के सामने आपने अभिषेक जब लिया, राज अभिषेक, राजा बने, तो आपने बोला था कि मैं अपनी निजी भावनाओं को अपने कार्य क्षेत्र में आने नहीं दूंगा। अपनी निजी भावना मतलब मेरा घर गृहस्थी परिवार। इसी प्रकार से जो साधु होते हैं वो भी अपनी निजी भावनाओं का त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए जाते हैं। जैसे हमारा भी परिवार है, है ना, संडे के दिन क्या चाहते हैं सब लोग, फैमिली गेट टुगेदर्स, है ना, सब चाहते हैं हम साथ में मिलें, पिकनिक्स करें, पार्क में जाएं, फोटोग्राफ खींचें, फेसबुक पे अपलोड करें, ये तो चाहते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। तो अपनी निजी भावनाओं का त्याग कर ही कोई व्यक्ति साधु बन सकता है। उसी प्रकार से राजा उस समय राज ऋषि होते थे, इसलिए राम राज्य सबसे उत्तम राज्य था, और आज भी लोग राम राज्य लाना चाहते हैं लेकिन राम के बगैर लाना चाहते हैं। ये दुख है हमारे जीवन का, राम के बिना राम राज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो क्या है कि लोगों ने अपने अनेकों गुरु, अनेकों संस्थाओं को ज्वाइन कर लिया है, जहां बताया नहीं जाता भगवान कौन, भक्त कौन, साधु कौन, है ना। और लोग भी प्रश्न पूछने लगे हैं, प्रभु जी इतने डुप्लीकेट साधु हैं मार्केट में, समझ नहीं आता असली कौन सा नकली कौन सा। तो जिस प्रकार से 500 रुपए का असली नोट भी है और नकली नोट भी है, कौन बताता असली है, कौन बताता नकली है, हाँ बैंक वाले बताते हैं असली कौन सा नकली कौन सा। ऐसे ही आरबीआई की गाइडलाइंस जैसे 500 रुपी नोट में डिफरेंस करती है, उसी प्रकार शास्त्र जो है वो बताते हैं साधु असली कौन नकली कौन। जो व्यक्ति शमा दमा तप शौचम शांते अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजा, जिस व्यक्ति के अंदर क्षमा करने की इच्छा है, जो स्वतः स्वभाव से दयावान है, जिसके अंदर तपस्या करने की प्रवृत्ति है, जो क्या करता है ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, अपना जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में भी उतारता है। ये नहीं पढ़ा बोला और खत्म। हम अगर खुद नहीं करेंगे तो आपका कभी बदलाव आने वाला नहीं आएगा। हाँ वो फिर क्या हो जाएगा, लेक्चर जो है वो प्रोफेसर जो कॉलेज में देते हैं ना, पढ़ते हैं बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं है, तो वही हो जाएगा, क्लास में टीचर बोलती है। लेकिन हम जब बोले और लोगों का जीवन बदले तो उसके लिए पहले हमें खुद का जीवन बदलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान राम ने बोला अपने आचरण से प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से प्रभु क्या करते हैं, जीवों को सिखाते हैं। भगवान राम ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया तो फिर सारे समाज के लोग क्या बोलेंगे, अरे राजा राम तो कैसे हैं, डुप्लीकेट हैं। धर्म के नियम तो कहते हैं कि अगर स्त्री किसी पुरुष के साथ, पर पुरुष के साथ संग कर एक रात्रि भी आए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही कंफ्यूजन में थे रामचंद्र जी, लेकिन सीता मैया ने कहा आपको अपनी निजी भावनाओं को त्याग कर प्रजा की खुशी के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो उन्होंने, देखिए, सीता मैया के कहने पर, रामचंद्र जी नहीं चाहते थे, सीता मैया के कहने पर उनको भेजा गया। तो जस्ट इमेजिन, इस प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। भगवान कहते हैं मैं क्यों प्रकट होता हूं, जानते हैं क्यों भगवान प्रकट होते हैं, क्यों होते हैं प्रकट, कौन बताएगा? आप लोग तो बहुत समय से प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं प्रकट होता हूँ। और क्या कहते हैं भगवान आगे? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं परित्राणाय साधुनाम, साधुओं को तारने के लिए आता हूँ। और रामचरितमानस में भगवान कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब अभिमानी पुरुष अहंकारी लोगों का बढ़ जाती है ना संख्या, तब भगवान प्रकट होते हैं। कहे अनीति जाए नहीं वर्णी, इतनी अनीति करते हैं कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जैसे रावण ने किया, दूसरे की स्त्री उठाकर ले गए और उसके बाद देने के लिए तैयार नहीं है। जाए अनीति जाए नहीं वर्णी सिद्ध विप्र धेनु सुरधरनी। और सिद्ध जो पुरुष हैं उन लोगों की क्या होता है, नाक में दम हो जाता है। जब ऋषि विश्वामित्र अपना यज्ञ करते थे तो अनेकों राक्षस आकर क्या करते थे, हड्डियां डाल देते थे और मल मूत्र का त्याग करते थे यज्ञ कुंड के अंदर। और एक बार तो बताते हैं जब राम लक्ष्मण गए जंगल में तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ जो कि गोवर्धन से भी ऊंचा, हिमालय जैसा ऊंचा पहाड़ हड्डियों का था। क्या करते थे राक्षस, ब्रेकफास्ट की तरह ऋषियों को उठा के खा जाते थे। और ना वे नीचे की बोन्स फेंकते हैं ना, जैसे नॉन वेजिटेरियन फेंक देता है, ऐसे फेंक देते थे ऋषियों को, संतों को। तो बोलते हैं सिद्ध विप्र धेनु सुरधरनी तब तब प्रभुधरी मनुष्य शरीरा। मनुष्य शरीर रखकर भगवान आते हैं और कहते हैं हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। हरि किस लिए आते हैं? सज्जन लोगों की पीड़ाओं को हरने के लिए। सोई जस गाये भगत भव तरही। जो व्यक्ति इसको गाता है उसके साथ क्या होता है, कृपा सिंधु जन हित तनु तरहे। और कृपा सिंधु भगवान जो है कृपालु, वो क्या करते हैं, इस संसार का हित करते हैं, उस व्यक्ति को तार देते हैं। तो ऐसे ही एक कथा आती है बहुत सुंदर रामचरितमानस में, रामायण में। वैसे तो रामायण के अनेकों अनेकों प्रकार की रामायण है, कहते हैं शत कोटि रामायण अपारा, थाउजेंड हंड्रेड करोड़, शत मतलब हंड्रेड, कोटि मतलब करोड़, हंड्रेड करोड़ टाइप की रामायण अवेलेबल है। तो उसमें से लेकिन ऑथेंटिक कौन सी है, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि भगवान राम जब अपने घर से निकलकर श्रृंगनापुर पहुंचे गंगा नदी के तट पर, तो वहां पर उनका एक भक्त इंतजार कर रहा था। क्या नाम था उसका? Who is the intelligent man? केवट। हरि बोल, माता जी के लिए हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। केवट वहां इंतजार कर रहा था। क्यों इंतजार कर रहा था? क्योंकि जब भगवान जब अपने शेर सैया पर लेते हैं, आपने देखा है टेलीविजन सीरियल में रामानंद सागर, हाँ मैन्युफैक्चर्ड, हाँ जो भी सीरियल्स हैं उसमें देखते हैं विष्णु भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। तो जब इस प्रकार से लीला हो रही थी तो एक कछुआ आता था उस सागर में। अभी भगवान के क्षीर सागर का कछुआ कोई नॉर्मल नहीं है, कोई ऋषि था जो कि वहां पर अपराध के कारण कछुआ बन गया। जैसे हम वृंदावन जाते हैं वहां पर अगर हम किसी जानवर को देखते हैं तो लोग बोलते हैं पता है ये जानवर भी सिद्ध होते हैं यहाँ के, ये चतुर्भुज रूपी भगवान समान होते हैं यहाँ के जानवर। तो एक्चुअली वो जानवर क्यों बनते हैं, वो भगवत धाम क्यों नहीं गए? वो इसलिए जानवर बनते हैं क्योंकि वो हुए तो बहुत बड़े संत, लेकिन उन्होंने क्या किया, वैष्णव अपराध, भगवान के चरणों में अपराध। इस प्रकार का जो कोई अपराध कर देता है तो उसको फिर क्या वृंदावन धाम तो मिलता है लेकिन वहां पर जानवर की योनि मिलती है। तो इसलिए हमको वैष्णव अपराध, भक्तों के अपराध से सदा बचना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्षीर सागर में एक कछुआ आता था, स्क्रॉल करता हूं धीरे धीरे, आया और भगवान के जैसे चरणों में प्रणाम करना चाहता था। लक्ष्मी जी पांव दबाती थी, लक्ष्मी कहती हट 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 हट, लक्ष्मी जी उसको हटा देती थी। उसको बड़ी तकलीफ होती थी कि वो राम जो सबको अपनी शरण देते हैं वो इस कछुए को अपनी शरण नहीं दे रहे हैं। अगर मुझे कछुए का शरीर मिला लेकिन मैं अपने पूर्व जन्म को याद रखता हूं कि मैं कौन हूं, एक मैं भक्त हूं और मुझे भगवान राम की चरण नहीं मिल रही है। आप देखिए, अपराध करने से भगवान उस व्यक्ति को त्याग देते हैं। और फिर उसने ये वादा किया, जब भगवान के पास बार बार आ रहा तो भगवान तो दयालु है ना, कृपालु है। भगवान ने देखा, कहा चिंता मत करो, अभी लक्ष्मी सेवा में है ना, ये आने नहीं देगी। मैं अभी त्रेता युग में आऊंगा राम बनकर, तब तुम वहां पर आराम से मेरे चरणों को छू लेना। तो इसी प्रकार से केवट वो कछुए थे जो कि क्षीर सागर में भगवान के चरणों को प्रणाम करना चाहते थे। और वो केवट जब इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे मेरे श्री राम, कब आएंगे मेरे श्री राम, और जब उन्हें पता चलता है कि श्री राम आ गए, तो फिर वो वहां पर ना कॉमिक सेंस लगाते हैं अपना, सिचुएशनल कॉमेडी है ना, और बोलते हैं कि हे राम आप कौन हैं। सब जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, हे राम आप कौन हैं। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, तुम जानते नहीं हो श्री राम को। श्री राम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मर्यादाओं की सीमाओं को लांघा नहीं कभी भी, और अपना घर त्याग कर अपनी माता के कहने पर एक अरण्य कारण वनों के अंदर एक विप्र रूप ब्राह्मण का रूप रखकर घूम रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं मुझसे? हम चाहते हैं कि आप हमें नाव से ये गंगा नदी पार करा दें, क्योंकि यहां तक तो हमें सुमंत जी छोड़ गए थे, लेकिन अब हम आगे जाना चाहते हैं पैदल पैदल नंगे पांव। तो वो कहते हैं केवट जी, नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता? लक्ष्मण जी ने बोला, बोले देखिए, जो आपके ये स्वामी जी है ना रामचंद्र जी, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कह रहे क्या प्रॉब्लम है? इनके फेस में प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी में प्रॉब्लम है, इनके चरणों में प्रॉब्लम है। कहां प्रॉब्लम है? कह रहे हैं इनके किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकी चरण रज में प्रॉब्लम है, पैरों की जो धूल है उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे धूल अगर पत्थर को टच कर जाती है तो स्त्री बन जाती है। हाँ, इनकी चरणों की धूल अगर किसी पत्थर को टच कर जाए तो वो स्त्री बन जाती है। कह रहे अच्छा, तो मेरी तो भाई नाव लकड़ी की है, जब पत्थर से स्त्री बन सकती है अहिल्या, तो मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो दो दो हो जाएंगी। तो आज के जमाने में एक तो मैनेज नहीं हो रही है, दो कैसे मैनेज करूंगा? तो बहुत टेंशन में आ जाता है। कहता है नहीं नहीं, आपको मैं चढ़ने नहीं दूंगा। तो भगवान राम चाहते तो और किसी की नाव में जा सकते थे, लेकिन बाकी सारे नाविक जो थे उस दिन स्ट्राइक पे थे। बताया गया रामचरितमानस में कि उस दिन स्ट्राइक पे थे, कोई था ही नहीं वहां पर। और एक जो नाविक था उसकी गंगा में नाव फंस गई थी, क्योंकि गंगा मैया कौन है? भगवान राम की पुत्री है। जानते हैं आप लोग कैसे पुत्री है? कैसे पुत्री है? चरणों से प्रकट होती हैं भगवान राम, भगवान विष्णु के। जब भगवान ने वामन अवतार लेकर बलि की इच्छा से तीन पग भूमि नापी, तो दो पग में तो उन्होंने ऊपर के ब्रह्मांड और एक पग में नीचे का ब्रह्मांड, और एक पग जब दूसरा पग रख रहे थे, तो भगवान के अंगूठे से क्षीर सागर का जो पर्दा था वो फट गया, और फटने से क्षीर सागर का जो जल था वो भगवान के चरणों से प्रकट नीचे आने लगा, और वही गंगा नदी है। इसलिए उनका एक नाम और है, क्या नाम है? विष्णुपदी, विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा नदी। तो ऐसी जो विष्णुपदी है वो थम गई कि मेरे पिता, पुत्री है ना, मेरे पिता आ गए तो पुत्री एकदम हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तो गंगा नदी मूवमेंट बंद हो गया गंगा नदी का। तो जो नाव गंगा के अंदर थी वो वहीं की वहीं फिक्स हो गई। अभी बचा केवल केवट ही, और केवट ले जाने को तैयार नहीं है। अभी तो भगवान राम बोले कैसे जाएंगे, 14 साल का वनवास काटना है। इन्होंने तो ट्रिप के स्टार्टिंग में मूड खराब कर दिया है ना, जैसे होता है हम यहां से निकले वृंदावन जाने के लिए और पंचर हो जाए हमारी गाड़ी, तो कितना मूड खराब होता है, अरे वृंदावन जा रहे थे गाड़ी पंचर हो गई। तो इसी प्रकार से वो बड़ा इंतजार करते हैं कि कैसे भी कुछ करिए केवट जी, हमको क्या करिए, पार कराइए। तो केवट कहते हैं ठीक है, मैं पार कराऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या करूंगा, आपके चरणों को धोऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि ये क्या सिस्टम है चरण धोने का? कह रहे अब जो भी है आप वेट करिए, मैं 2 मिनट में आता हूं। और घर जाता है और लकड़ी का एक पात्र लेके आता है। तो आप पूछेंगे कि धातु का पात्र क्यों नहीं लाया है? बता सकते हैं क्यों नहीं लाया? धातु का पात्र इसलिए नहीं लाया क्योंकि भगवान ने किस रूप में आए थे? विप्र रूप में। और ब्राह्मण और जो विप्र होते हैं, साधु संत होते हैं, वो लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, धातु इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए जितने भी आचार हैं वो नॉर्मल स्टील में नहीं खाते हैं। वैसे भी स्टील में नहीं खाना चाहिए हमारा, लेकिन अभी क्या है परंपरा बन गई, हम तो पेपर में भी खा लेते हैं है ना, फिर भी बोलते हैं वी आर एडवांसिंग है ना। तो उस समय सोने चांदी में खाया जाता था, तो सोना चांदी तो केवट के पास है नहीं, तो क्या करे केवट? तो केवट ने लकड़ी जो होती है ना वो शुद्ध धातु है या मिट्टी, तो लकड़ी के बर्तन लेके आया और उसमें जल भरा, और जल भरकर क्या किया, भगवान का चरण अभिषेक किया। चरणों का अभिषेक करके बड़ा इंटेलिजेंट था, चरण अभिषेक कर बोला रुकिए अभी 2 मिनट, जो नीचे पात्र में इकट्ठा किया था अपने घर जाकर अपने पत्नी अपने बच्चों के ऊपर भी छिड़क दिया। भगवान का जो अभिषेक का जल होता है हमें उसका पान करना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान के चरण अभिषेक का पान करता है तो कई कई जन्मों के उसके पाप तो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे जंगल में जब खेती बाड़ी होती है, देखा आपने अनाज उगता है तो अनाज के नीचे जो रूट्स रह जाती हैं, मिनिमम रूट्स, उसमें जब हम दोबारा खेती करना चाहें तो हमें अग्नि लगानी पड़ती है और एक बार अग्नि में सारी रूट्स जल जाती हैं। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान का जल, भगवान का निर्माल्य ये माला, भगवान का प्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा इतनी पावरफुल है कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति ध्यान से इनका पालन कर ले तो सारे के सारे पाप अनंत कोटि, ये नहीं इस जन्म के। कई लोग पूछते हैं प्रभु जी हमने ना भक्ति में आने से पहले बड़े पाप किए हैं, क्या ये धुल जाएंगे? तो भगवान कहते हैं इस जन्म के नहीं। सर्व धर्मान परित्याजम माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्योम मोक्षाश्मि मा शुच, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, खाली इस जन्म के नहीं अनंत कोटि जन्मों में जो आपको मालूम भी नहीं है, ऐसे जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। तो उसने अपने कार्य क्या किया, अपने परिवार को फिक्स कर लिया कि हम तो धाम जाएंगे साकेत धाम, और भगवान के चरणों का अभिषेक किया। फिर भगवान बोले अभी बैठ जाओ, तो भगवान तो बोला ठीक है बैठिए, तो भगवान को बिठा दिया और भगवान बैठे। तो फिर बहुत ही इंटेलिजेंट था, एक बार में गंगा नदी पार नहीं करी, zigzag 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 टाइम बिता रहा उनके साथ में। तो भगवान बोले कि अरे भाई नाविक तुम तो बड़े कमाल हो, कभी तुम चढ़ने नहीं देते हो, जब चढ़ा लिया तो zigzag zigzag करके चला रहे हो नाव, सीधी सीधी क्यों नहीं चलाते हो? तो बोला भगवान आप एक ही चक्कर में परेशान हो गए, मैं तो 84 चक्करों में घूम घूम के भी परेशान नहीं हुआ, आप एक चक्कर आया तो परेशान हो गए, इसलिए मुझ पर कृपा करो मुझे भी इन चक्करों से बचाओ। तो भगवान बोले, तो लक्ष्मण जी बोले अरे बहुत धूर्त है इस तरह की बेवकूफी की बातें करता है, जिसने एक बार भगवान राम के चरणों का अभिषेक कर लिया विष्णु पाद उद्गम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते, जो विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल अभिषेक जैसे कल हमारे मंदिर में हुआ उसका जल जो पी लेता है पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो तुम क्यों मूर्ख इतना दिक्कत टेंशन करते हो, चलो चलो आगे चलो। तो बोलो तुम्हारा जब उस पार उतारा तो बोले बताओ कितना रेंट हुआ, बोट ट्रैवल का रेंट होता है ना। तो भगवान राम बोले देखिए हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं बस ये अंगूठी है मेरे पास रत्नों की बनी हुई, ये मैं आपको दे सकता हूँ। तो केवट बोला कि देखिए मैं आपसे कोई उपहार नहीं चाहता हूँ, ना आपसे कोई दक्षिणा चाहता हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप और हम तो एक ही व्यापार में है, हमारा और आपका तो बिजनेस एक ही है। तो भगवान लक्ष्मण जी बोलते अरे भगवान राम जो कि पूरे अयोध्या के राजा हैं और रघुकुल के जो राजा हैं वो विप्र रूप रख के आए हैं, त्यागी हैं वैरागी हैं, ऐसे से तुम अपनी बराबरी करो, छोटा सा एक नाविक है जो कि साइड में रह के बस बोट चलाता है, तुम्हारी और भगवान की कोई बराबरी है? तो भगवान बोले नहीं नहीं रुको सुनने दो, भगवान शांत कर देते सुनो हाँ बताओ बताओ कैसे हम बराबर हैं? हम दोनों इसलिए बराबर हैं क्योंकि इनका भी बिजनेस है और मेरा भी बिजनेस है, मैं गंगा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता हूँ और भगवान क्या करते हैं भव सागर के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते हैं, तो आज मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उतारा, जब मेरा अंतिम समय आएगा तो आप भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट उतारिएगा। हरि बोल। तो भगवान राम से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हम पर कृपा करिए। ऐसे ही भगवान के एक और सुंदर भक्त हुए हैं, उनका नाम है क्या, शबरी, जानते हैं आप लोग? तो भगवान की जो ये शबरी थी बताते हैं कि अपने पिछले जन्म में एक राजा की पुत्री थी और राजा की पुत्री होने के नाते उनको क्या हुआ, वो उनका इच्छा थी कि वो संतों का संग करें। जब वो अपने पालकी में गुजरती थी तो उनके पालकी में चारों तरफ से राजा की पुत्री है और दोनों तरफ से कवर कर दिया जाता था, और जब पालकी लेके चलते थे तो पीछे से कीर्तन की ध्वनि आती थी, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, क्या कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। इस प्रकार से जब कीर्तन सुनता है कोई व्यक्ति, तो उसकी आत्मा परमात्मा का संग प्राप्त करना चाहती है। तो वो भी चाहते थे कि मुझे तुरंत ही क्या मिल जाए, भगवान का संग मिल जाए। लेकिन अगर कोई छोटा सा एमएलए भी हो ना, कमिश्नर हो, जब रोड पे आते आपने देखा है, ब्लॉक कर देते हैं, दूर कर देते हैं, और कीर्तन मंडली को तो फेंक ही देते साइड में, हाँ साधु हट जा साइड। वो जानते नहीं है कि किसी साधु की पूर्व, अभी अपने एक साधु बनने से पहले क्या योग्यता थी। जैसे लोग जानते नहीं, हमने एमबीए किया अपना पुणे से, और फिर लंदन से डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल्स किया, लेकिन आज किसी व्यक्ति के घर जाते हैं कीर्तन करने के लिए, उसको उसको नहीं पता कि हमारे क्या एजुकेशन है। वो क्या सोचता है, धोती कुर्ते में कोई पंडित आया है ना, और घर पे घंटी बजाओ तो खोलते हैं और फिर बंद कर लेते हैं, और कई बार तो धक्का भी दे देते हैं, जाओ जाओ हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में आना है ना, बुक्स ले लीजिए, गीता ले लीजिए बोलते हैं, जाओ जाओ हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। वो जानते नहीं है। तो इसी प्रकार से जो ये राजा की पुत्री थी, इसको अलाउ नहीं था किसी भी संत से मिलना जुलना, और राजा की पुत्री है। अभी जब कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं घुसने देता हम लोगों को, तो कैसे हम घुसेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास में? तो वो तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है, भक्ति के अंदर चार चीजें बताई गई हैं जो भक्ति करने नहीं देती हैं। बता सकते हैं कौन सी चीजें चार जो भक्ति नहीं करने देती हैं? फर्स्ट इज योर ब्यूटी, जो सुंदरता है वो व्यक्ति को भक्ति नहीं करने देती है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है मैं बहुत सुंदर हूं। जो व्यक्ति का एजुकेशन बहुत हाई होती है, उसको भक्ति नहीं करने देती, उसकी भक्ति के बीच में आगे आती है क्या, उसकी एजुकेशन, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। और जब व्यक्ति की तीसरी चीज है उसका धन, मैं बहुत धनी हूं, मैं तो भगवान को भी खरीद सकता हूं, मैं बोलूंगा तो कृष्ण मेरे यहां नाचेंगे, मैं बोलूंगा तो राम मेरे यहां कीर्तन करेंगे, ऐसा सोचते हैं वो, है ना। और सुंदर स्त्री, परिवार, ऊंचा कुल, इस प्रकार की जो ये चार वस्तुएं हैं, ये व्यक्ति को भक्त नहीं बनने देती। और अगर कोई बन जाए तो उसको अपने जीवन में भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित कौन है भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो उसकी पुत्री को मिलने नहीं दिया जाता था किसी से भी, और बड़ी टेंशन में रहती थी, मैं कैसे भक्त बनूंगी, मैं कैसे भजन करूंगी। और यही करते करते एक दिन उसके प्राण चले गए। बोलते हैं अंत काले चमामे व स्मरण मुक्त व कलेवरम, अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी गति होती है। वो क्या चाहती थी बनना, भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन। और भगवान के भक्तों का दर्शन करने के लिए उनको अलाउ कर दिया गया, ठीक है आप भगवान का दर्शन करो। अगले जन्म में क्या बना दिया, बिल्कुल ही गरीब परिवार में जन्म दे दिया। कौन से परिवार में, जहां पर सुअर का मांस खाया जाता है, जस्ट इमेजिन, शबर जाति, शबर जाति के घर में शबरी, शबरी जो है इनका नाम नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, जातिवाचक शब्द है, जाति जिसमें शबर में पैदा हुई इसलिए उनको शबरी कहते हैं। जैसे पटेल में कोई पैदा हो तो बोलेंगे पटेल साहब, छाबड़ा साहब, चड्डा साहब, ये तो है जातिवाचक शब्द है, ये एक्चुअली व्यक्ति का नाम नहीं है। तो शबरी का नाम तो और ही था, कुछ और था, लेकिन उनका क्या था, शबरी इसलिए बोलते हैं कि उस जाति में पैदा हुए। तो एक दिन शबरी, क्योंकि अपने पूर्व जन्म के कारण भक्ति में उनका बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए क्या हुआ, उन्होंने एक दिन देखा कि उनके पिताजी घर में शादी की तैयारी कर रहे हैं, और घर में 100 से ज्यादा जानवर इकट्ठे कर रखे हैं, और वेट कर रहे हैं कि कब शादी का सुबह मुहूर्त आए और हम क्या करें, इनका मांस अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। होता है ना, नॉन वेजिटेरियन आइटम बनते हैं जो लोगों के घर में, वो लोग विवाह में तो बेस्ट आइटम, कहीं बकरा, कहीं गाय, कहीं सुअर, ऐसा खाते हैं वो लोग, है ना। तो और जो बेस्ट खिलाएगा उसको तारीफ, वाह 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 वाह, क्या नॉनवेज खिलाया, क्या नॉनवेज खिलाया, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से शबरी के पूर्व जन्म के कारण उसको तो भक्ति प्राप्त थी, उसने देखा कि मेरे एक संतुष्टि के कारण, विवाह के कारण 100 जो है जानवरों का वध हो जाएगा, ये तो बहुत गलत है। तो उसने रात को ही क्या किया, सारे जानवरों को रिहा कर दिया, भागो भागो, भाग गए सारे जानवर, और खुद भी भाग गए घर से, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो फिर मेरी शादी जबरदस्ती कराएंगे, जानवरों को भी मारेंगे। वो भाग गई, अभी भाग के जाएगी कहां जाएगी, सिटी में, जंगल में, जंगल में क्या करेगी जाके, वन में, है ना। वन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र 50 से ऊपर की है, 50 से अबव। आप देखिए जब हम गिनती पढ़ते हैं हिंदी में 50 के ऊपर तो क्या आता है, हाँ जी, पक्का लॉक, 51। 51 का मतलब क्या है, 51 बा वन, भगवान ने गिनती भी ऐसी बनाई कि अब तो जा वन, अभी भी नहीं जाते घर में लॉक। पुत्रों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ये नहीं सोचता तेरा क्या होगा, कभी नहीं सोचता वो। और इसी के कारण अंत काल में भगवान मृत्यु के रूप में आ जाते हैं और फिर तब उसे बड़ी तकलीफ होती है। एक मौका और दे दो भगवान, एक मौका और दे दो, हे राम हे कृष्ण एक मौका और दे दो। फिर क्या कहते हैं, जन्म जन्म ऋषि तप कराई अंत काल कहे राम आवत नहीं। अंत में भगवान राम का नाम निकलता नहीं, चाहे आपने कितनी भी तपस्या करी हो, है ना। इसके लिए भगवान का नाम को अपने जीवन का क्या बनाना पड़ेगा, मूल मंत्र बनाना पड़ेगा। बोलते हैं नाम काम तरु काल कराला, नाम कैसा है भगवान का जो कलयुग के काल को भी काट सकता है। सुमिरन समन सकल जग जाना, इसको जो सुमिरन करता है वो व्यक्ति ही बता सकता है कितना स्वादिष्ट है। जैसे आज आनंद उत्सव का जो प्रसाद है वो ही बता पाएगा जिसने अटेंड किया है। अभी आप नेक्स्ट संडे आएंगे, जो लोग आज नहीं आए उनको बोलेंगे अरे पता बहुत बेस्ट प्रसाद था, कहेंगे हमने तो खाया नहीं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान के नामों का गुण गाता है ना उसी को मालूम है कि इसके अंदर कितनी प्योरिटी है। बोलते हैं राम नाम कली अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता, और पिता और माता को भी वो व्यक्ति तार देता है जो अपने जीवन में भगवान के नामों की शरण ग्रहण करता है। अगर आपने आज भगवान के नाम हरे कृष्ण मंत्र का शरण ग्रहण करी तो आपके पिता माता अगर जीवित नहीं भी होंगे तो भी उनको क्या होगा, उनको शुद्ध लोक प्राप्त हो जाएगा। अगर घर में एक भी शुद्ध भक्त बनता है, प्योर डिवोटी का मतलब अन अभिलाषिता शून्यम, हाँ कोई उसकी अभिलाषाएं नहीं है जीवन में, बस एक ही अभिलाषा है क्या, मुझे राम की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अगर उसकी यही अभिलाषा है तो बोलते हैं त्रिशतम 3×7=21 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 फादर की साइड 7 मदर की साइड और 7 उसकी आने वाली जो आई भी नहीं है, जस्ट बाय चैंटिंग क्या बहुत पावरफुल है भगवान का नाम, बहुत ही पावरफुल। हाँ तो इसी प्रकार से जो शबरी थी ये पहुंच गई वन में, क्योंकि भक्त जो होता है वो बहुत समझदार है, वो जानता है कि सिटी में रहकर भक्ति करना बहुत मुश्किल है, इतना स्ट्रेस है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सेंटर बनाए कि अगर आप वन में नहीं जा सकते, वृंदावन भी नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट कम से कम इस्कॉन केंद्र में हफ्ते में एक दिन जरूर आए, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि वृंदावन का एटमोस्फियर मिलता है। वृंदावन में क्या होता है, वृंदावन का मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर लस्सी होगी, पूड़ी होगी, हाँ शॉपिंग होगी, फोटोग्राफी होगी, व्हाट्सएप पे फोटो होगा, वीडियो होगा, ये थोड़ी है। वहां पर क्या है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। वहां पर साधु का संग मिलेगा, भगवान की कथा मिलेगी और तभी हमारे जीवन से अहंकार जो है समाप्त हो जाएगा, काम क्रोध लोभ समाप्त हो जाएगा। इसको समाप्त करने के लिए कथा सुननी पड़ेगी, धाम की धूली अपने सिर पे लगानी पड़ेगी। तो इसलिए धाम जाना चाहिए, अगर हम ना ही जा सकते तो एटलीस्ट यहां पर तो रेगुलरली आना चाहिए। कितने लोग हैं जो आप लोग रेगुलरली आते हैं, बहुत कम है। बाकी सारे लोग क्यों नहीं आते, क्या काम है आपको इंपॉर्टेंट, मोर देन दिस, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, क्या जरूरी है जीवन में, और कुछ जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति समझदार है वो जानता है कि भगवान की कथा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। वासुदेवम कथा रुचि, वासुदेव की कथाओं में किसी की रुचि नहीं है, समझिए उसने क्या किया, जीवित जिसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और जल गया, ऐसा श्यामचरितमानस बोलती है। उसको व्यक्ति का हाथ जलने के समान है, आत्महत्या करने के समान है, जिसने शास्त्रों की शरण को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और किसी चीज को प्रायोरिटी दे दी। क्योंकि अंत में क्या चीज आपकी सपोर्ट करने वाली है, परिवार, भगवान का नाम। तो इसी प्रकार से वो बड़ी समझदार थी शबरी और वो वन जाई, और वन जाकर क्या किया उन्होंने, एक संतों की कुटिया थी जिनका नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था, हाँ मतंग क्यों नाम था उनका, क्योंकि उनकी मति भगवान के अंगों के अंदर ही रहती थी, इसलिए उनका नाम था मतंग। मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और वहां जाकर बिना बताए क्या करने लगी, सेवा करने लगी और झाड़ू लगाती थी, प्रसाद जो प्रसाद रात को गिरा रहता था वो झाड़ू लगा के उठाती थी उनको, और जितने भी साधु थे उनके कपड़ों को वॉश करके सुखा देती थी। सुबह जब 4 बजे मंगल आरती के लिए भक्त उठते तो देखते, अरे किसने हमारे कपड़े धो दिए, किसने ये आंगन को साफ कर दिया, और अमेजिंग इतनी सुंदर सफाई, इतने सुंदर कपड़े किसने धो दिए। तो मतंग ऋषि को शिकायत करते, पता नहीं कौन एक साधु है जो कि हमसे पहले 2:30 बजे उठ जाता है और सेवा करता है। तो जो संत होते हैं ना वो बड़े ही टेंशन में आ जाते हैं जब उनकी कोई सेवा करे। एक्चुअली जो समाज है ना, मटेरियल वर्ल्ड, वहां पे लोग चाहते हैं लोग मेरे क्या बने, नौकर बने, और मैं क्या बनूं, बॉस बनूं, लेकिन भक्ति में लोग क्या चाहते हैं, मैं दास बनूं और कोई मेरा बॉस बने। इसलिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन चलता है भक्तों के बीच में। प्रसाद पारे होते हैं ना, एक दूसरे की थाली खींचते हैं, मैं फेंकूंगा। क्यों कहते हैं, जिस व्यक्ति ने किसी संत की अगर सेवा कर दी, किसी व्यक्ति ने अगर किसी संत की, किसी भक्त की सेवा कर दी, तो उसकी भक्ति का 1/6 पार्ट उसी पल तुरंत शास्त्र बताता है उसके पास चला जाता है। इसीलिए हमें क्या बोला गया, सबसे उत्तम क्या है, वैष्णव सेवा, नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवा। वैष्णवों की सेवा अगर किसी ने कर दी है ना, तो सेवाएं पूछेंगे आप कौन कौन सी होती हैं। कभी कोई भक्त अगर प्रवचन करता है तो उसको ध्यान पूर्वक सुनना, ये क्या है, श्रवण सेवा। किसी ने आपको नाम जप की माला दी, इसको ध्यान पूर्वक जपना, ये क्या है, कीर्तन सेवा। और प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में ध्यान पूर्वक प्रसाद बांटना, प्रसादम सेवा। डीटी ड्रेसिंग, ये भी भगवान की सेवा है, आत्मनिवेदनम सेवा, तो अर्चनम सेवा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा करने से हम उसका एक छठांक भाग बिना कुछ प्रयास किए प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो आप देखिए कितना पावरफुल चीज है। इसलिए मतंग ऋषि बहुत टेंशन में आ गए कि कौन है जो हमारा सारा का सारा कर्म लेके चला जाता है, सुबह सुबह भक्ति का कर्म समाप्त हो जाता है और बिना बताए। तो फिर उन्होंने कहा आपकी बार किसी दो साधुओं की ड्यूटी लगाई, आप अर्ली राइज 2 बजे उठ जाओ, 2:30 बजे से पहले। तो 2 बजे उठे तो देखा कि एक शबर जाति की औरत आती है और सफाई कर रही कपड़े। ओ हाय 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 महाराज, सब गंदा कर दिया, एक शबर जाति की स्त्री ने आकर हमारे वस्त्रों को छू लिया, हमारे आंगन में प्रवेश कर लिया, सब गंदा हो गया। तो मतंग ऋषि बोले अच्छा, लेकिन उसके भाव से तो नहीं लगता कि वो शबर जाते की, क्योंकि अगर वो सुअर खाती होती तो उसकी भावना ऐसी नहीं होती, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग। अगर वो इस प्रकार का ढंग कर रही है तो उसने कोई गलत व्यक्ति नहीं है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मतंग ऋषि जाते हैं और सुनते हैं वो क्या कर रही है, आंगन में झाड़ू दे रही है और साथ में क्या कर रही है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम के नामों का उच्चारण कर रही है। शबर जाति में उत्पन्न होने से क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के नामों की शरण ग्रहण कर ली तो अभी वो शबर नहीं रहा, वो क्या बन गया, संत बन गया। किवा विप्रा किवा न्यासी, शूद्र किवा नए, एवेता तत्व वेता सही गुरु है। वो व्यक्ति गुरु या संत बन सकता है जिसने तत्व से कृष्ण या राम को समझ लिया है। किवा विप्रा, चाहे वो ब्राह्मण हो, किवा शूद्र, चाहे वो शूद्र हो, किवा न्यासी, चाहे वो सन्यासी हो, जिसने तत्व से कृष्ण को समझ लिया। तत्व मतलब भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं, जीवेरे स्वरूप हो नित्यर कृष्ण दास। अगर किसने समझ लिया ये तत्व तो वो गुरु बनने योग्य है, वो भक्त बनने योग्य है। तो ये बात मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को बताई और बोले मैं इसको हरिनाम दीक्षा प्रदान करूंगा, और उनको दीक्षा प्रदान करी। और उसके बाद शबरी ऑथराइज्ड सेवा करने लगी उस आश्रम में, और सादा दिन क्या बोलती रहती थी, हरे कृष्णा इस प्रकार से भगवान के नामों का वो चिंतन करती रहती थी सदा। तो एक दिन जब मतंग ऋषि अपने अंतिम समय में थे, अपने प्राण त्याग रहे थे, तो बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी, बोली कि अब क्या होगा मेरे जीवन में जो मेरे गुरु नहीं रहेंगे, है ना। भौतिक लोग रोते हैं क्योंकि हमको मम्मी की प्रॉपर्टी नहीं मिली, हमको चाचा जी जो है ना अमेरिका वाले उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिली, इसलिए रोते हैं, है ना। लेकिन वैष्णव जब रोते हैं तो क्यों रोते हैं, वैष्णव इसलिए रोते हैं कि हमको क्या नहीं मिलेगा, संग नहीं मिलेगा। साधु संग जो है ना, ये सत्संग जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है भगवान की कथाओं का। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होए। जो सुत धारा मतलब पुत्रों की प्राप्ति, और लक्ष्मी जो है ना धन, ये तो पापी के घर भी आता है। आपने देखा है ना कितने पापी हैं संसार में जो तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन संत समागम जो ये हो रहा है इस टाइम रॉ हॉल के अंदर, संतों का समागम, आप सब कौन है संत, क्योंकि आप भी भगवान का नाम लेते हैं। संत समागम हरि कथा कृष्ण की कथा तुलसी दुर्लभ दो, दुर्लभ मतलब वो व्यक्ति आसानी से नहीं मिलती है। आपके रिलेटिव बोलते होंगे आपको पागल हो गए हो, संत हो गए हो, लेकिन ये जो व्यक्ति दुर्लभ व्यक्ति को प्राप्त होती है, हर एक के जीवन में ये कथा प्राप्त नहीं होती है। शुद्ध धारा तो सबको प्राप्त होती है। एक बार ऐसी एक स्त्री थी, वो अपने गुरु महाराज के पास जाती थी और खूब माला करती थी। 8 साल हो गए शादी को लेकिन बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन गुरु से बोलती है, गुरुजी मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझको 8 साल हो गए भजन करते हुए, मेरे घर में बच्चा भी नहीं हुआ। मेरी जो पड़ोसन है वो तो पता नहीं कुछ खराब करती नहीं, फिर भी उसके बच्चे पे बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए उसके, मेरे तो बच्चे नहीं है, ऐसे करके बोलने लगे। तो साधु जो थे कुछ जवाब नहीं दिए, व्यास आसन से उठे और सीधे चल दिए, और उनके पीछे पीछे वो स्त्री भी चल दी। जब रास्ते में गए तो देखा कि वहां एक सुअर जा रहा था, और सुअर के पीछे आपने देखा है ना पिगलेट्स, कितने बच्चे होते हैं, 12, 13, 15, वो पीछे पीछे चल रहे थे। तो गुरु ने बोला, तुमने देखा ध्यान से, क्या ये जो सुअर की जो फीमेल सुअर है ये जा रही है पिगरेस, और इसके पीछे पिगलेट्स जो है जा रहे हैं, लेकिन इसने तो कभी भजन नहीं किया, इसने तो कभी भजन नहीं किया, भजन नहीं करा फिर भी इसके 15 बच्चे हैं। इसका मतलब भजन का फल बच्चे नहीं है। किसी को बच्चे या धन प्राप्त हो रहा है तो अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों के अनुसार प्राप्त हो रहा है, इसलिए अपने भजन का दुरुपयोग ना करें इच्छा मांगकर, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों अलग ही ट्रेन है। एक ट्रेन है जिसमें धर्म की ट्रेन, शरीर की ट्रेन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, बोलते हैं हम सब भाई भाई लेकिन लड़ते रहते हैं, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 लोगों की जो धर्म की ट्रेन है शरीर की, ये ऐसे चल रही है, और इसके साथ में एक और ट्रेन चल रही है पैरेलली, कौन सी, आत्मा की ट्रेन। तो धार्मिक और आत्मिक, तो हम लोग कौन है, धार्मिक की आत्मिक, आत्मिक, इसका मतलब गीता हिंदुओं के लिए नहीं है, आत्मा के लिए, और आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि जब व्यक्ति गर्भ में बनना शुरू होता है तो उससे पहले ही आत्मा आती है, तब शरीर बनना शुरू होता है, और जब वो पैदा होता है और 1 साल का जब हो जाता है तब उसके माँ बाप बोलते हैं, तुम कौन हो, लल्ला तुम तो हिंदू हो, तुम तो मुसलमान हो, तुम तो सिख हो, तुम तो क्रिश्चियन हो, है कि नहीं प्रभु जी? हाँ, तो जब व्यक्ति का जन्म होता है, शरीर बन जाता है, तब व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख बनता है, लेकिन जो आत्मा है वो तो शरीर में पहले ही थी। और जब व्यक्ति का शरीर छूटता है तो बोलते हैं मिस्टर सो एंड सो चल बसे, चले और कहीं जाकर बस गए, तो कौन गया, वो तो वहीं लेटे हुए हैं आत्मा, लेकिन उसका तो पूरा जीवन कुछ ख्याल ही नहीं रखा हमने, आत्मिक लेवल पे तो कार्य नहीं किया हमने, तो किस लेवल पे कार्य किया, धार्मिक लेवल पे। तो इसलिए हमारा जो ये संस्था है इस्कॉन, ये क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा रिलीजन नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस। लोग बोलते हैं आप तो हिंदू भगवान की पूजा करते हैं ना, आप लोग तो क्रिश्चियन कृष्ण को फॉलो करते हैं, हम लोग तो इसको फॉलो करते हैं, हम लोग वो समझते नहीं है, तुम करते रहोगे फॉलो इस शरीर को, और हम करते हैं आत्मा को, जो कि इस संसार के रहते रहते भी और इसके बाद भी, जी LIC वाले बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो जीवन के साथ साथ भी आनंद उत्सव और जीवन के बाद भी आनंद उत्सव, भगवान के नाम में शक्ति है। तो शबरी जो थी वो जानती थी, और उनके गुरु इस प्रकार से अपना शरीर त्याग रहे थे तो बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी, और फिर क्या हुआ, एंड में जब उनके गुरु जा रहे थे उन्होंने कहा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी सेवा देखकर कि तुमको इसी जन्म में कौन प्राप्त होंगे, भगवान प्राप्त होंगे इसी जन्म में। और उन्होंने बताते हैं कई सौ साल तपस्या करी, भगवान के नामों का जप किया, कई सौ साल। आप पूछेंगे कई सौ साल कैसे, सत्युग के अंदर 1,00,000 वर्ष आयु होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष आयु होती थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष आयु होती थी, और कलयुग में 100 वर्ष आयु होती है। तो इस प्रकार से त्रेता युग में जब 10,000 वर्ष आयु थी तो उन्होंने उस 10,000 वर्षों में से कई हजार, कई सौ वर्ष तपस्या करी, रोज क्या बोलती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान का उच्चारण करती रहती थी कि कब मेरे प्रभु आएंगे, और डेली तैयार होती थी। हमको तैयार होना चाहिए किसके लिए, भगवान के लिए। अरे भगवान के राम का प्रकट दिवस है, कभी बर्थडे पार्टी में जाना हो तो कितना तैयार होते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, हाँ प्रभु जी लोगों के पास तो ज्यादा कुछ नहीं है तैयार होने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्नान करते हैं, पैंट शर्ट टाई निकालते हैं, बर्थडे पार्टी। लेकिन राम का बर्थडे होता है तो लोग ऐसे सबसे खराब कुर्ता पजामा जो होता है ना घर का, अरे सत्संग में जाना है, चलो निकाल लो कुछ भी, चलो है ना, माता लोग भी अरे घर का सूट पहन के चलो, है कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए सबसे सुंदर तैयार होकर आना चाहिए हम लोगों को, हाँ, जो भगवान के लिए अपना जीवन गुजारता है फिर भगवान उसके साथ होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम में, मैं उसके काम में, जो अपने काम में, तो मैं अपने धाम में, तो मैं अपने धाम में बैठा रहूंगा, तुम यहीं रहते अपना काम तमाम करते रहना। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके साथ आए, तो आपको भगवान के लिए ही सारे कार्य करने पड़ेंगे। यद करोषी यद अश्नासी यद जहोसी ददासी यद यद करोसी मद अर्पणम, सब कुछ क्या करो, मेरे अर्पण करो। चाहे हम तैयार हो तो भगवान के लिए, खाना बनाए तो भगवान के लिए, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो भगवान के लिए, नाम कर रहे हैं तो भगवान के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। इस तरह से कभी जीवन होगा तो आप देखेंगे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। भगवान क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, उनका भंडार है शक्तिमान। और उनकी जब शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो हम भी कैसे हो जाएंगे शक्तिमान, हम भी एकदम ऐसे बोलते हैं ना भक्त लोग, बड़े ऑरा होता है भक्तों के अंदर, एक चमक होती है, तेज होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान के पार्षद होने के कारण, सेवक होने के कारण उनके अंदर भी चमक आ जाती है। ऐसा नहीं है कि कथा प्रवचन से पहले सारे भक्त जाकर फेशियल करवाते हैं, अरे अरे चमक आ गई, बड़ी चमक आ गई। ये चमक परमानेंट आती है अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है, उनके शरण ग्रहण करता है। ये सब उनके गुरु ने उनको समझाया, और शबरी के गुरु अपना शरीर त्याग कर चले गए थे, तो शबरी डेली तैयार होती थी भगवान के लिए, रोज उनके लिए ऑल्टर बनाती थी कि आज मेरे राम आएंगे, उनकी गद्दी सजाती थी कई सौ वर्ष। हम तो कई मिनट वेट नहीं कर पाते, अरे आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, चल छोड़ बकवास है, भगवान का नाम लेते लेते दो साल हो गए कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, छोड़ दो ये बेकार है बेकार है। लेकिन शबरी इंतजार करती रही, और एक दिन क्या हुआ, जब वो बूढ़ी बुजुर्ग हो गई थी, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तो उनके सामने कौन प्रकट होते हैं, राम, रामचंद्र जी प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। अब इतना घबरा गए, हाथों में जो फल थे उनके बेर, वो हाथों से गिरने लगे, और क्या कर रही हैं, खुद खा रही हैं, और फिर कांपते हुए हाथों से अपने भगवान राम को खिला रही हैं, है ना। तो हम सोचते हैं अरे झूठे बेर भगवान को खिला दिए, और भगवान भी कैसे हैं, झूठे बेर खा लिए। हमारे इस्कॉन में तो इतने नियम है, झूठा मत खाओ, देव भक्त का मत खाओ, भगवान को ताजा लगाओ, क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है। जिस दिन ऐसा भाव आ गया कि मेरे कृष्ण या मेरे राम को मैं झूठा नहीं खिला सकता हूं, खट्टा नहीं खिला सकता हूं, मैं उनको मीठा मीठा बेर खिलाऊंगा, उस दिन राम भी खाने लग जाएंगे, कृष्ण भी खाने लग जाएंगे, है ना, वो गुठली तक खा लेंगे। लेकिन हमारे अंदर भाव होना चाहिए, है ना। कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझे जो भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिना कभी मैं कुछ भी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भगवान एक फूल भी स्वीकार करते हैं अगर हम उन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित करें। अगर हम सोचे अरे मैं तो रईस हूं, मैं तो छप्पन भोग खिला रहा हूं, भगवान तुम कुछ कर नहीं रहे मेरे लिए, तो भगवान ऐसे का छप्पन भोग त्याग देते हैं। बोलते हैं दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विधुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम की जो सगाई है, जो प्रेम का रिलेशन है, ये सबसे उत्तम है। इसलिए भक्ति प्रेम पूर्वक होनी चाहिए, लविंग रिलेशनशिप विद गॉड, लविंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज, जिससे मिले प्रेम से मिले, है ना। अगर हम प्रेम को हटा देंगे अपने जीवन से, चार्ली चैपलिन कहते हैं कि ताकत उसको चाहिए जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करना चाहता है। क्या कहते हैं, ताकत उसको चाहिए, बोल नहीं रहे हमारे प्रभु जी, अभी भोग आ गया, भोग देखना नहीं, आप देखेंगे भगवान नहीं खाएंगे फिर। ताकत किसको चाहिए, जो लोगों का, बोलिए प्रभु जी, ताकत, बोलिए बोलिए, चार्ली चैपलिन कहते हैं, बोलिए, ताकत उसको चाहिए जो दूसरों का बुरा करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, ताकत उसको चाहिए। और प्रेम की ताकत ऐसी है कि बिना ताकत के सब कुछ करा सकती है। अगर हम कृष्ण को चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ करें, तो हमें उनसे क्या करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए परंपरागत शिष्यों के द्वारा कही गई कथाओं को सुनना चाहिए, परंपरागत शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जैसे बताते हैं, एक बार एक राज्य में, इसको सुनाकर हम समाप्त करेंगे, एक बार एक राज्य में दो भक्त थे, वो राम कथा करते थे, और उनके दो भाई थे, मतलब एक भक्त थे जो राम कथा करते थे, उनके दो भाई थे जो कि भक्त नहीं थे, राम कथा नहीं करते थे। तो एक दिन राजा की बड़ी इच्छा हुई कि रामनवमी का उत्सव है, मैं क्या करूं, राम कथा श्रवण करूं। तो उन्होंने कहा जाओ और रमणी को बुला के ले आओ। रमणी मतलब जो राम कथा वाचक होता है, प्रवक्ता होता है। एक होता है प्रवक्ता और एक होता है वक्ता। प्रवक्ता करता है भगवान का प्रवचन और वक्ता जो होता है वक्ता रहता है। और दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक होते हैं श्रोता मतलब जो श्रवण करते हैं, और एक होते हैं सोता जो सो जाते हैं श्रवण के द्वारा, है ना। तो इसलिए सोता नहीं होना चाहिए और वक्ता नहीं। जहां वक्ता होता है वहां फिर लोग सोए जाते हैं, जहां प्रवक्ता होता है वहां श्रोता होते हैं, श्रवण करते हैं ध्यान पूर्वक। तो आपको क्या बनना है? सोता। और मुझे क्या बनना है? वक्ता। तो मैं बन पा रहा हूँ तो ठीक है, अगर फिर हरी बोल बोलिएगा, नहीं बन पाऊंगा तो फिर बोलिएगा, चुप रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रवक्ता थे रमणी कहलाते हैं राम कथा वाचक। तो वो रमणी को बुला के ले आए। अब लाए तो जो ओरिजिनल थे जिनको कथा आती थी वो नहीं थे, उनके दो भाई थे जिनको कथा नहीं आती थी। अभी इनको राजा ले आए, राजा के सिपाही उठा के, तो दोनों बड़े घबरा गए, बोले हमें कथा वथा नहीं आती है। तो राजा के सिपाही बोले अरे ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हो, तुम्हारे भाई कथावाचक हैं, अभी तुम भी तो कथावाचक बन गए होगे उनके साथ रह के, चलो कथा करो। तो बेचारे बड़े घबरा गए। तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे, अवधि, अवधि मतलब अवध भाषा जो अयोध्या क्षेत्र है। तो बोलते हैं, एक बोल रहा है दूसरे से, अरे राजवा पूछी हो तो क्या कहियो, राजा अगर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे। राजवा पूछी हो तो का कही हो, राजा पूछेगा तो क्या कहेंगे। दूसरा कहता है तोर गति समोर गति, जो तेरी गति होगी सो मेरी होगी, मैं क्या बोल सकता हूँ, जो तोर गति सो मोर गति। वो बेचारा बड़ा रोने लगते हैं दोनों। सिपाही देखते हैं कहते हो ये तो सच में अनपढ़ गंवार है, राजा इन्होंने तो झूठा स्वांग रचाया है, ब्राह्मणों के वस्त्र पहनते हैं, कथा करना नहीं जानते हैं, बोल रहे हैं राजवा पूछी हो तो का कही हो। दूसरा कह रहा है जो तोर गति सो मोर गति। राजा बुलाता कहता है इनको कहाँ डाल दो, इनको डाल दो अंधेरी कोठरी में, जो ब्राह्मण के वेश में और नकली ढोंगी हो उसके साथ तो दुर्व्यवहार करती है जनता, और वो जेल में चले जाते हैं। अभी तथाकथित कई अनेक साधु जेल में ही हैं, इसी के कारण है, क्योंकि वो क्या, वेश तो साधुओं का है लेकिन हृदय कलमश से भरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान के नामों का जप नहीं करते। बोलते मीठा है, पंडाल में सारे लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, घर जाते हैं, फिर बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, नॉनवेज खाते हैं, कह रहे हमारे महाराज जी ने मना नहीं किया। अरे महाराज जी खुद ही नहीं खा रहे हैं तो फिर मना कैसे करेंगे। इसी के कारण संसार जो क्या है नीचे की तरफ जा रहा है। जब वो भगवान के नामों का जप करेंगे, खुद शुद्ध होंगे, तभी तो दूसरों को शुद्ध कर पाएंगे। इसलिए परंपरागत साधुओं से ही सुनना चाहिए। तो ऐसे ही वो दोनों के दोनों को कोठरी में डाल दिया। अब उनका भाई जो रमणी था रामायण की कथावाचक, वो लौट के आया, बोला भाई मेरे भाई कहाँ गए, उनको तो डाल दिया जेल के अंदर। हाँ जेल में डाल दिया, क्यों डाल दिया, क्योंकि उन्हें रामायण की कथा नहीं आती थी और वो कह रहे थे राजवा पूछियो, राजा को राजवा राजवा कर रहे थे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे। अच्छा ऐसे, तो राजा ये जो भाई गया बचाने अपने भाइयों को। अभी जो भक्त होता है ना वो कैसा होता है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो चतुर हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है मैं उसको क्या कहता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते, जो मेरे पास आने की बुद्धि मैं उनको प्रदान करता हूँ। तो ये भक्त आते हैं और कहते हैं राजा साहब आपने कैसे मेरे भाइयों को काल कोठरी में डाल दिया, क्या आपका ये हक बनता है एक रामायण के कथावाचक भक्त को। अरे कथावाचक नहीं है तुम्हारे भाई, वो नकली है, नौटंकीबाज। ऐसे बोल रहे थे कि राजवा पूछी हो तो का कहियो, दूसरा कह रहा था जो तोर गति सो मोर गति। तो ये कहता है जो भक्त था, सही तो बोल रहे थे, यही तो कथा होती है। अच्छा तो मुझे मूर्ख समझते हो, राजा बोला कहां होता है कथा के अंदर कि राजवा पूछी हो तो कहा कहियो, आपको नहीं मालूम क्योंकि आप राजा हैं, आप तो विषयी जीवन जी रहे हैं, मैं भक्त हूं, मैं जानता हूं रामायण के अंदर ये कहां आता है। अच्छा तो बताओ कहां आता है रामायण के अंदर। तो यही बोलता है कि जब दशरथ महाराज ने रामचंद्र जी को वनवास दे दिया, और जब वो वनवास चले गए केकई के कहने पर, तो सुमंत जी जो दशरथ के कौन थे, सेक्रेटरी थे, जब वो उनको छोड़ने जाते हैं शिंगनापुर जहां केवट मिलता है वहां तक छोड़ने जाते हैं, तो सुमंत जी को कहते हैं कि रामचंद्र जी वापिस चलिए ना प्लीज, दशरथ जी जो है वो परेशान हो जाएंगे, आप प्लीज वापिस चलिए। लेकिन सुमंत जी के कई बार कहने पर भी क्या होता है, वो रामचंद्र जी वापिस नहीं जाते। जब रामचंद्र जी नहीं जाते तो राम सुमंत जी का जो सारथी था रथ का, वो पूछता है सुमंत जी से, क्या पूछता है, राजवा पूछी हो तो क्या कही हो, दशरथ जी पूछेंगे तो क्या कहोगे। राजा कहता है ओ ऐसा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि रामायण की कथा है। तो क्या, राजा कहता ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया, आपने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन ये कहां आता है कि जो तोर गति सो मोर गति, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं आता, आप ये बता के दिखाओ। तो कहते हाँ ये भी आता है रामायण में, कहां आता है। तो बोलते हैं ये रामायण के अंदर आता है जब बाली और सुग्रीव जो थे उनके अंदर लड़ाई हो जाती है ना, तो तो फिर क्या होता है, सुग्रीव जी रामचंद्र जी से पूछते हैं कि रामचंद्र जी पूछते हैं क्या हाल है आपके सुग्रीव जी, क्योंकि बाली ने क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी को क्या कर लिया था, अपहरण करके अपने पास रख लिया था, कैद कर लिया था। तो रामचंद्र जी जब वन में घूमते घूमते सुग्रीव के पास पहुंचे तो सुग्रीव से पूछा, क्या पूछा, कि तुम्हारा घर कैसा चल रहा है भाई, है ना, ये तो बोलते हैं आप कैसे हैं, घर गृहस्थी कैसी चल रही है। तो वो बोलता है जो तोर गति सो तुम्हारी पत्नी रावण ने ले ली, मेरी बाली ने ले ली है, है ना। तो ये भी राम की कथा है। तो इस तरह से लोग जो है वो अनेकों दृष्टांत देते हैं रामायण की कथा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो हर एक चीज में भगवान के नामों का दर्शन करते हैं। हमें भी भगवान के नामों का दर्शन कर, प्रभु जी टाइम हो गया या अभी और करना है हमको, 10 मिनट्स और कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि भगवान के जो नाम है उनके अंदर बड़ी शक्ति है, वो व्यक्ति को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वो अपनी इन प्रॉब्लम से सॉल्व कर लेता है। वरना अनेकों भक्त हमने ऐसे देखे हैं जो अनगिनत अपने अपने तात्पर्य लगाते हैं। एक होता है रामायण में आता है कि होए वही जो राम रचि राखा, होए वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। इसका अर्थ क्या है, तो एक बार हम देखा था हमारे एक महाराज हैं वो बता रहे थे कि वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और दो व्यक्ति आपस में तर्क कर रहे थे, डिस्कशन, रामायण की कथा पढ़ी, श्लोक पढ़ा, पढ़ने के बाद में चौपाई पढ़ने के बाद में डिस्कस कर रहे होए वही जो राम रच राखा को करी तरक बढ़ावे साखा। इसका मतलब है रामचंद्र जी जो चाहते हैं वही होता है। कोकरी, कोकरी का मतलब तो वो अपने गांव में, कोकरी मतलब होता है तोते की वाइफ, मतलब तोते की पत्नी, तोती है ना, तोती जो है फीमेल पैरट उसको बोलते हैं कोकरी, और कोका होता है तोता। तो कोकरी तरक, कोका और कोकी मतलब तोता और तोती आपस में तर्क कर रहे हैं इस बात पे। तोती कहती है रामचंद्र जी ग्रेट है, तोता कहते हैं नहीं है। कोकरी तरक, और जिस शाखा पे वो बैठे हैं आम की डाल के, वो शाखा बढ़ती जा रही है इनके तर्क से, ये वो तात्पर्य लगाते हैं। कोकरी तरक बढ़ावे शाखा, शाखा की लेंथ बढ़ रही है, ये होगा इसका मतलब। ये तो महाराज बोल रहे थे लोग इस तरह से बुद्धि लगाते हैं। अगर हमें कभी शास्त्र को समझना है तो हमको किसके जरिए समझना चाहिए, साधुओं के जरिए समझना चाहिए जो परंपरा में आते हैं। अनगिनत इधर उधर बहुत सारी कथाएं चल रही है, टेलीविजन खोलेंगे वहां भी चल रही है, है ना, कहीं भी जाएंगे पंडाल लगे हुए हैं, आप जिससे पूछें वो व्यक्ति आपको जवाब दे सकता है। इंडिया के अंदर एक एक कास्ट है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जानते हैं कौन सा टाइटल, बताइए कौन सा टाइटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन बताएगा सबसे ज्यादा पाने वाला टाइटल कौन सा है। यस प्रभु जी लोग आनंद नहीं आ रहा आनंद उत्सव में, आवाज तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है सब लोगों को। हाँ बिल्कुल, कोई हरी बोल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस आए बैठे बुद्ध की तरह हम स्टैचू फॉर्म में। आनंद मतलब खुश होना चाहिए ना, तो बताइए ऐसा कौन सा टाइटल है जो सबसे ज्यादा इंडिया में मशहूर है, कौन सा टाइटल है। हाँ जी महाराज, और कुछ तो बोलिए, शर्मा जी, और यहाँ पर तो ज्यादातर शर्मा जी क्योंकि शर्मा रहे हैं बोलने में। हाँ स्वामी जी, हाँ और गुरु जी, और परम पूज्य, वेरी गुड, अभी गोस्वामी सबसे ज्यादा मशहूर टाइटल है, बता दूं, खोल दूं रहस्य, राय साहब, क्योंकि हर एक रीति राय देने में साहब है। आप दो चीजों से उन पे कभी भी तर्क करिए वो हमेशा तैयार होते हैं जवाब देने के लिए, कौन सी दो चीजें हैं, हाँ एक तो धर्म रिलीजन और दूसरा नहीं पॉलिटिक्स में तो मेरे जैसा कुछ ज्ञानी नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एक तो धर्म और एक स्वास्थ्य हेल्थ। व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो तो लोग पहुंच जाते हैं, मेट्रो में हार्टमीट है, ड्रिप्स लगी हुई है, ऑलरेडी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हार्ट अटैक आया उसको, हृदय रोग, और वो क्या कर रहे हैं वहां पर, आप जी ना ऐसा करो कि ना दूध ले लो और दूध के अंदर ना हल्दी डाल लो और उसमें ना बादाम डालो, काजू डालो, इलायची डालो, गर्म करके आधा ठंडा करके पी लो, आपका दर्द ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सारे के सारे लोग डॉक्टर होते हैं अपने आप में। अभी बोले जब खुद के दर्द होगा तब नहीं पिएगा वो, राय मुफ्त एडवाइस सबसे ज्यादा देते हैं। और धर्म के बारे में आप पूछिए भगवान कौन है, है ना, हमारा एक सेमिनार होता है हम उसमें पूछते हैं हु इज गॉड, तो ना सबके सब लोग खड़े कर देते हैं अपने हाथों, मैं हैरान हो जाता हूँ सब जानते हैं तो फिर आए क्यों हैं यहाँ पर। सबसे पूछो कौन है, फिर उत्तर पता चलते हैं जी, शिव जी हैं गॉड, ब्रह्मा जी हैं गॉड। एक तो बोल रहे थे कि गॉड तो कोई है ही नहीं, ये तो एक शक्ति है जो कि हमें दिखाई नहीं देती है और वो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है बस, है ना। इस प्रकार से लोग अपने तर्क देते हैं लेकिन वो रामचरितमानस नहीं पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं उसमें कि होए वही जो राम रचि राखा, होता वही है जो रामचंद्र जी चाहते हैं। को करी तर्क, काय को तर्क करते हो बढ़ाए शाखा, इस संसारी जीवन को क्यों अपने इंक्रीज करते हो। भगवद गीता और शास्त्रों में अनेकों जगह आता है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान राम को या भगवान कृष्ण को भगवान ना मानकर क्या मानता है, एक साधारण मनुष्य मानता है, तो उसके जीवन में क्या होगा, अनेकों जन्मों तक वो नर्क का भागी बनेगा। अगर वो समझता है कि भगवान कृष्ण या भगवान राम ये अनेकों देवी देवताओं के समान है तो उसको नर्क का भागी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, अगर आप पढ़ें तो आप जान पाएंगे। इसके लिए कहते हैं कि जब आपको मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन लेनी हो, आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे खराब जो होता है आपके गली मोहल्ले में, थर्ड क्लास, जिसकी टॉर्च में लाइट नहीं, ऐसे ऐसे बैटरी जलाया चलता है, उसके पास जाते हो। किसके पास जाते हो, स्पेशलिस्ट के पास। लेकिन धर्म पूछने के लिए किसके पास जाते हैं, हमारे गली मोहल्ले में एक प्रभु जी मंदिर है, उसमें एक पंडित जी हैं, वो करते क्या हमें पता नहीं लेकिन कुछ बोलते हैं, सुदौड़ के वो ही सही बताते। उन्होंने बोला धर्म मतलब शिव जी पे जल चढ़ाओ, यही धर्म है, गलत है। उसका अर्थ यही है, हमें समझना चाहिए कि अगर हमें बेस्ट ज्ञान चाहिए, बेस्ट नॉलेज चाहिए, तो जिस प्रकार बीमारी को दूर करने के लिए बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही अपने जीवन को सुधारने के लिए किसके पास जाना चाहिए, बेस्ट साधु के पास। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ऑथराइज्ड सोसाइटी जो है उसी से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और अगर इतना इंपॉर्टेंट ये जीवन हमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो क्या हमने पाया अपने जीवन में। तो इसलिए सबसे ज्यादा भगवान के नामों को अपने जीवन में आप रखिए। और बताते हैं भगवान के एक भक्त थे जो कि जब रामचंद्र जी का संवाद चल रहा था और वो कुटिया में थे अपनी, और उनकी जो एक रावण के जो वो थे, क्या नाम था, मामा जी मारीच, वो जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, मारीच वो एक मृग बन जाते हैं, हिरण बनते हैं, और क्या करते हैं, रामचंद्र जी की पत्नी सीता को रावण जब उठाना चाहता था तो उनका सहयोग करते हैं उसमें। और वो आते हैं किसका वेश रखकर, साधु का वेश रखकर। आप देखिए राक्षस को भी किसका वेश रखना पड़ रहा है, साधु का, और फिर क्या करने आ रहे हैं, वो सीता जी का अपहरण करने। सीता जी कौन है, जीवात्मा। बताते हैं कि सीता जी जीवात्मा है, जैसे हमारी ये आत्मा है, और राक्षस जो है वो कौन होता है, हमारी बुद्धि। और ये जो बुद्धि है ये क्या करती है, इस जीवात्मा को इसी शरीर के अंदर बंदी बनाना चाहती है। शरीर क्या है, लंका। शरीर है ये लंका के स्वरूप है। तो हमारी जो बुद्धि है रावण जैसी, वो क्या करती है, जीवात्मा को इसी शरीर के अंदर बंद कर देना चाहती है। लेकिन जीवात्मा का असली डेस्टिनेशन क्या है, परमात्मा। परमात्मा मतलब नारायण। सीता जी के पति कौन है, राम। उनका परम डेस्टिनेशन है राम के पास जाना, लेकिन रावण क्या चाहता है, कहां बंदी बन के रहे, इसी शरीर में। और इसको भी बंदी बनाने के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि किसका वेश धारण कर लेते हैं, जैसे रावण ने साधु का वेश धारण कर जीवात्मा सीता जी को क्या किया, रामचंद्र जी से दूर कर दिया। साधु का वेश धारण करके लोग भक्तों के जीवात्माओं को इसी शरीर में बांध देना चाहते हैं, इतना गलत गलत प्रचार करते हैं। क्या होता है उससे, वो संसार में 84 लाख की योनि में घूमता रहता है, घूमता रहता, घूमता रहता। और रावण जब उनको उठा के ले जा रहा था तो वहां पर एक वल्चर था, क्या नाम था उसका, जटायु। जटायु ने जब देखा क्या हो रहा है कि मेरी सीता मैया को एक लेके जा रहा है रावण, और उसके जो विमान था पुष्पा विमान, इतने बुढ़े थे कि वो चल भी नहीं सकते थे, है ना? और वो क्या किए, अपना पूरा बल लगाकर उड़ गए, और उड़कर क्या किया, सीता मैया की रक्षा करना चाहा। जब सीता मैया की रक्षा के लिए जब वो उड़ रहे थे तो खूब जोर जोर से अपने परों को उड़ाने लगे, तो रावण ने क्या किया, अपनी तलवार से उनके पर काट दिए। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब कोई भक्त आकर आपको प्रचार करना चाहता है कि देखो देखो गलत जगह मत जाओ, इस जीवात्मा को कहां मत लेके जाओ, अपनी बुद्धि के अनुसार मत चलो, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में लगाओ, तो हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को उसके पर भक्त की क्या करते हैं, पर काट देते हैं, भक्त को धक्का मार देते हैं, उसकी जब बात सुनाई नहीं देती हमारे कान हम बंद करके श्रवण करने बैठते हैं। अगर उसके कान में हमारी आवाज नहीं जाएगी तो हमारे हृदय से कभी भी कलमश दूर नहीं होगा। जिस प्रकार से बारिश के दिनों में आपने देखा है, जब बारिश होती है तो उस समय सांप चूहे और मेंढक ये ज्यादा निकलते हैं, क्यों? इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनके जो छेद है रहने वाले उसके अंदर पानी भर गया है। तो इसी प्रकार से कथा रूपी श्रवण जब हम करते हैं, हमारे कानों के छेद में जाएगी ना कथा, तो क्या होगा, हमारे हृदय में जो सांप है कौन कौन से है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, इस प्रकार के जो सर्प हैं वो कहां से निकल जाएंगे, इस कान से बाहर। इस कान से कथा गएगी इस कान से बाहर, या इस कान से कथा गई तो इस कान से बाहर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अनर्थों को जीवन में से आपके समाप्त हो जाएं, है ना, भक्त प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी इतने समय से कथा सुन रहे हैं चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, वो इसी के कारण कि जब हम कथा सुनते हैं तो सुनते नहीं हम सो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इस बार प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा हुआ, एक भक्त थी उनके प्रभुपाद जी के आस पास आकर बोली, आई वॉन्ट टू एडमिट समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने क्या बोले, जब मेरा ना आपके प्रवचनों में नहीं आती थी ना, उससे पहले मुझे एक बीमारी थी, इनसोम्निया, जानते क्या होती है, नींद नहीं आती थी, इनसोम्निया, और मैं दवाई खाती थी, कई मिलियन रुपए में लगा चुकी हूँ अपने शरीर के ऊपर, मैं इतनी पैसे वाली हूँ लेकिन मेरे पास कंफर्टेबल बेड है लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन जब से मैं आपके प्रवचनों में आती हूँ बहुत आनंद आता है, बस जय राधा माधव, उसी टाइम क्या होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, और जब बोला जाता है महाप्रसादे गोविंदे तभी आंखों खुलती हैं। आहा, क्या रिलैक्स होता है शरीर, क्या योगा कराते हैं आप लोग, भक्ति योगा सबसे अच्छा योगा यही है। हाँ, ये नहीं है, भक्ति योगा का अर्थ है अपने कानों को खोलो और ध्यान पूर्वक सुनो। उसने एडमिट किया तो प्रभुपाद जी के शिष्य कई बार बोलते थे, प्रभुपाद शी इज नॉट लिसनिंग शी इज स्लीपिंग, प्रभुपाद ने कहा लेट हर स्लीप फॉर सम टाइम बिकॉज अभी इसका वक्त नहीं आया भक्त बनने का। कुछ समय बाद वो इतनी अच्छी भक्त बनी कि सिर्फ 3 घंटा वो सोती थी और सारा समय बोलती रहती थी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नामों में अनेकों शक्तियां हैं, बोलते हैं कि अपतु अजामिल गज मनिकाओ, जो भी चाहे गज हो चाहे वो अजामिल थे, अजामिल ने अपने अंत समय में क्या पुकारा, नारायण, हाँ, और गज गजेंद्र हाथी जो थे उसने भी क्या पुकारा, गोविंद, उसने अंत समय में भगवान के नामों का पुकार किया तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है भगवान का नाम। कहते हैं अपतु अजामिल गज मनिकाओ भय मुकत हरि नाम प्रभाव, हरि नाम के प्रभाव से इन लोगों की मुक्ति हो गई थी। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सकही राम गुण गाई, राम को भी नहीं मालूम कि राम के नामों में कितनी शक्ति है। हाँ, भगवान भी नहीं जानते अपनी शक्तियों के बारे में। इसी प्रकार से जो भगवान का नाम लेते लेते जब जटायु उड़े तो आप सोचिए उन्होंने अपने कंफर्ट के बारे में नहीं सोचा, है ना। इसी प्रकार हमें भी सेवाओं में कथाओं में हो सकता है बैकएक, है ना, पैरों में दर्द होता है, सब भक्त ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं कथा के टाइम में कीर्तन के टाइम में, ये कंफर्ट को छोड़कर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे अगर वो कभी अपने कंफर्ट को नहीं त्यागते तो क्या कभी भगवान कृष्ण राम की सेवा कर पाते। उन्होंने इतने सारे वर्ल्ड में 108 मंदिर बनाए, कितने, 108, है ना, इन हाउ मेनी इयर्स, 11 इयर्स, 11 सालों में, सोचिए 14 बार इस पूरे विश्व का भ्रमण किया, प्रवचन दिए 10,000 से भी ज्यादा प्रवचन दिए, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए, सोचिए 70 साल की उम्र से लेके 81 साल की उम्र में। अभी हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग भक्त जो होते हैं वो कहते हैं मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है, मेरी बैक एक हो गया है, और ये अभी तो यंग भक्त भी कहने लग गए हैं, इतने कंफर्ट में रह रहे हैं हम लोग कि हम भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर नहीं है। अगर आगे हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जैसा जटायु को प्राप्त हुआ। पता है कैसा सौभाग्य था, जटायु को भगवान ने जब अंतिम समय में, जटायु क्या बोल रहे थे, राम राम राम, और अपने ही खुद के हाथ से उनका अंतिम संस्कार किया, जो कि दशरथ महाराज जो भगवान के स्वयं पिता थे उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। दशरथ महाराज ने कई अनेकों जन्मों तक तपस्या करी है कि मेरे घर में राम पुत्र के रूप में प्रकट हो, और उन्होंने पुत्र कामिष्ट यज्ञ भी किए इस प्रकार से कि मेरे घर में कौन प्रकट हो, राम प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। और उनको यज्ञ में चरु मिला था, उस चरु के भाग को उन्होंने कौशल्या, सुमित्रा और केकई में बांटा, जिससे उनके घर में चार भगवान विष्णु के रूप प्रकट हुए, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। क्या नाम था उनका? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये भगवान के चार विष्णु रूप हैं जो कि प्रकट होते हैं वहां पर। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे दशरथ महाराज जिनको भगवान स्वयं घर में आए लेकिन अंतिम समय में उनको दर्शन नहीं दिए, किसको दिए? जटायु को। जटायु कितनी चैंटिंग करता था जानते हैं? कितने लोग कितनी माला करते थे डेली? कितनी? 108, 192, 16, कितनी? जल्दी बोलिए तो। 16 राउंड्स तो प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया था उनको। हाँ, कितने राउंड करते थे? हाँ, काउंटलेस। ओके, पीछे प्रभु जी बैठे हैं। हरि बोल प्रभु जी, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? वहां तक आ रही है? आ रही है तो जवाब दीजिए, कितने माला करते थे जटायु? 64। हरि बोल, गौड़िया मठ से भक्त थे वो। हरि बोल। और कितनी माला, माता जी लोग पीछे बताए, कितनी माला करते थे जटायु? एक भी माला नहीं करते थे। माला कैसे करेंगे? हाथ थोड़ी थे, पंख थे उनके, माला कैसे करेंगे? मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जिसमें आप ये चैंटिंग कर सकते हो। उनके तो पंख थे, वो कैसे चैंटिंग करते? लेकिन उन्होंने सेवा करी भगवान की और सदा भगवान के नामों का उच्चारण किया, अपने मुख से बोलते रहते थे। हाँ, क्या बोलते रहते थे? राम राम राम, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते थे। और जब अंतिम समय में उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को त्याग कर भगवान की जो देवी है सीता मैया की सेवा करना चाहा, तो उन्होंने अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? सोचिए यहाँ पर आग लग जाए अभी 56 भोग के समय में, है ना? लंका अभी प्ले दिखाएंगे, उसमें लंका कांड दिखा दिया, हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना? तो सबसे पहले निशाचर मतलब हम लोग ही भागेंगे, है ना? लंका में आग लगेगी बाद में, पहले हम भाग जाएंगे। प्रभु जी आपके लिए होगी कथा श्रवण, हम तो भाग रहे हैं, हमारे घर परिवार बच्चे भैया वेट कर रहे हैं हमारा, है कि नहीं? नहीं, भगवान के लिए हमें तत्परता से शरणागत होना पड़ेगा, तभी भगवान हमारे लिए आएंगे। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम कुछ नहीं करते भगवान के लिए, है ना? तो इस प्रकार जटायु ने किया। तो जटायु ने तीन मुख्य कार्य किए जिनके कारण अंतिम समय में भगवान ने उनका क्या किया, अंतिम संस्कार किया स्वयं भगवान राम। ऐसा सौभाग्य किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हुआ जो कि जटायु, जो कई साल महीनों तक सोते नहीं, नहाते नहीं थे, स्नान नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं आप घर जाके स्नान करना छोड़ दें घर से। और साथ में जटायु क्या करते नहीं थे? चैंटिंग भी नहीं करते थे। और साथ में वो क्या खाते थे? वल्चर क्या खाता है? नॉन वेज, मांसाहार का सेवन करते थे। लेकिन फिर भी स्वयं भगवान राम उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अंत समय में किसका नाम पुकारा? राम का। अंत समय में किसके लिए अपने शरीर का त्याग किया? भगवान के लिए, भगवान की शक्ति के लिए, सीता मैया के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या थी, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि जब वो उड़े और उनके पंख काटे गए तो सीता मैया की नजर, निगाह जो थी वो पड़ गई किसमें? जटायु के ऊपर। जब जटायु पे निगाह पड़ जाती है ना, पड़ गई तो बस हो गया काम। इसीलिए सीता मैया के अगर हमारे ऊपर निगाह पड़ गई ना तो बस हमारा हो गया काम, है ना? इसीलिए हम देखें तो बोलते हैं हमेशा भगवान के नामों का जब उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं? सीता राम, राधा कृष्णा, राधा गोविंदा, हरे कृष्णा। पहले शक्ति का नाम आता है, फिर शक्तिमान का नाम आता है। क्योंकि शक्ति जो होती है भगवान की अंतरंगा, वो सॉफ्ट हर्ट होती है, कोमल हृदय की होती है। और उसका अगर निगाह हम पे पड़ गई, क्योंकि कृष्ण के पास तो टाइम नहीं हमारे लिए, है ना? अगर राधा रानी की निगाह हम पर पड़ गई या सीता मैया की निगाह पड़ गई तो हमें भी जटायु जैसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। आप देखिए कि जैसे हमारे घर में काम वाली रखनी हो या निकालनी हो तो उसका डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है डिसीजन? माता जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी सारे बोल रहे हैं, माता जी, माता जी, माता जी लेती है सारा डिसीजन। हाँ, क्यों लेती हैं? क्योंकि माता जी जानती हैं, घर को चलाती हैं, हेड ऑफ द हाउस हैं माता जी। तो इसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में भी शक्तिमान को कौन चला रहा है? शक्ति, उनकी अंतरंगा शक्ति राधा रानी। हाँ, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, कृष्ण का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जो कामदेव को भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, मदन मोहन। और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, राधा रानी कृष्ण को भी मोह लेती हैं। ओह अमेजिंग। और अगर राधा रानी की हमें कृपा प्राप्त हो गई तो कृष्ण तो हमें जीवन में मिलने वाले हैं, है ना। इसलिए हमको सदा राधा रानी को जो पसंद है वही करना चाहिए। राधा रानी क्या चाहती है? सदा मेरे स्वामी के नामों का उच्चारण किया जाए। राधा रानी चाहती है सदा मेरे स्वामी की सेवा करी जाए। राधा रानी चाहती है भक्तों में आपस में प्रेम किया जाए और अपने अंत समय में भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया जाए, है ना। इसलिए हमें सदा बोलते रहना चाहिए
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने अपनी कर्कश वाणी से आप लोगों को बहुत कष्ट पहुंचाया, तो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे माफ करिएगा, मेरे से जो त्रुटि हुई है। और धन्यवाद देना चाहेंगे शाश्वत नारायण प्रभु जी का, उन्होंने यहाँ पर, और विनय चावला प्रभु जी, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और राम जी के बारे में वर्णन करने का कुछ मौका दिया। वैसे तो अज्ञानी पुरुष हूँ मैं, है ना, लेकिन फिर भी जो कुछ सुना है उस श्रवण मात्र से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, तो जो त्रुटि है उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं किसी का कोई प्रश्न है तो हम पूछ सकते हैं, फिर आगे ड्रामा और कीर्तन होने वाला है। कोई एनी वन क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, है ना। सब लोग रामायण के मर्मज्ञ प्रयाग ज्ञाता है, तो आप लोग मुझे सिखाइएगा अगली बार, ठीक है। ठीक है, यू रेडी टू टीच मी? इधर आस्क क्वेश्चंस, या तो प्रश्न पूछिए या फिर सिखाइए, या फिर मैं प्रश्न पूछूं आपसे, क्या पसंद है? तो तीन में से कुछ तो एक करना पड़ेगा। इधर यू नीड टू टीच मी, इधर आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, इधर यू आस्क क्वेश्चंस, व्हाट यू विल डू? आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बंद करके आप लोगों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसा लगता है क्या? टॉर्चर नहीं होता, तो जब प्रेम होता है ना तो हम तो डिस्कस करते हैं ना। बच्चा पूछता है जब छोटा होता है अपनी मदर से प्रेम करता है, उस पर विश्वास करता है, मम्मी 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 चिड़िया का नाम क्या, मम्मी मम्मी चिड़िया का नाम क्या, मम्मी बोलते इसका नाम है गौरैया। अच्छा गौरैया, समझ आ गया। मम्मी मम्मी रंगीन रंगीन सा पक्षी कौन सा? ये पीकॉक है ना, मोर। अच्छा मोर, संतुष्ट भी हो जाता है। तो ऐसे हमें प्रश्न पूछना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं पूछ रहे ना, इसका मतलब हम आनंद उत्सव में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग ये चीज, आपको भगवान से प्रेम नहीं है। आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो, लेकिन अगर हमें प्रेम होगा तो हम भगवान के बारे में जानना चाहेंगे, अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करना चाहेंगे। आए बैठे चले गए, ये तो जीवन का नियम ही है। आए कुछ काम किया, कुछ प्रोडक्शन किया, दो बच्चे पैदा किए, उनका करियर बना, एंड में हरि बोल। हाँ है अभी प्रश्न, या फिर खत्म करें? आप लोग ऐसे ही जाना चाहते हैं वापस बिना आनंद के? कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, ये व्यक्ति जाग गए, अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस।
जैसे हम यहाँ आते हैं, संडे को आते हैं, तो एंथुसियाज्म बना रहता है
जी,
लेकिन वापस जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो फिर कब हो जाता
है? हाँ, ये तो है, ये संसार का नियम है। वहाँ पर बना कर रखने का एक तरीका है कि हम एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो यहाँ आए, और साथ के साथ क्या करें कि हम अपने घर में शास्त्र रखें, बुक्स। बुक्स में एसोसिएशन इज इक्वल टू हियरिंग, या फिर हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं ना, जैसे ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को अपने कान में ईयरफोन लगाकर एफएम सब सुनते हैं। कितने लोग एफएम सुनते हैं रोज? सब सुनते हैं एफएम, है ना, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए इच्छा नहीं होती है। आनंद उत्सव के चक्कर में आज तो फंस गए प्रभु जी, अगली बार दिखाओ बुला के हमें, तो अगली बार बुला के दिखाओ प्रभु जी, अब तो कभी भी नहीं आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी आपका। क्या नाम है आपका?
आरपी सिंह
जी के लिए हरि बोल। अच्छा प्रभु जी, आपके भी कृष्ण भावना में जागृत हुई, तो इसमें प्रश्न ये है कि प्रभु जी का अजामिल जो थे, उन्होंने अंतकाल में नारायण बोला, अपने पुत्र को पुकारा, फिर भी उनको क्या हुआ? भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो हम भी तर जाएंगे अंतकाल में नारायण नाम को बोलने से। बताते हैं कि जो अजामिल था, उसने अपनी 25 साल की उम्र तक बहुत ही ज्यादा तपस्या करी, और क्या हुआ, 25 साल के बाद वो एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया, जिसके साथ उसका क्या हुआ, पतन हो गया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधुर एवं ही मंतव्यम। हाँ, उस व्यक्ति को साधु मानना चाहिए जिस व्यक्ति ने कभी भी जीवन में किसी भी काल में मेरा भजन किया हो। अगर हम भगवान का, हमारे को तो मालूम नहीं हमने भजन किया है या नहीं किया है। और अंत काल में बोलते हैं, जन्म जन्म ऋषि तप कराई अंत काल कहे राम आवत नहीं। कंठ में कफ पित्त वात हमारा गला पकड़ लेती है, लोगों के मुख से राम नहीं निकलता, निकलता क्या है, मेरी वसीयत का, मेरे बच्चे, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी बंद हो जाता है। प्रभुपाद जी के पास एक तोता था, वो क्या बोलता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और फिर जब एक बार बिल्ली ने उसको पकड़ लिया तो क्या बोल रहा था, हरे कृष्णा नहीं निकला, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, है ना। आप कभी देखिए, इसको ट्राई करिएगा अपने जीवन में, चोट लगती है ना कभी, तो लोगों के मुख से निकलता है ओई माँ, हाँ, किसी के निकलता है ओह, हाँ, कोई बोलेगा गालियां देने लगते हैं कुछ लोग तो, है ना, लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकलता ओह हरे कृष्णा जय श्री राधे, कभी निकलता है ऐसे। इसका मतलब इतने से कष्ट जब आते हैं तब भगवान का नाम नहीं आया, जब 40,000 बिच्छू हमको काटेंगे तो क्या कभी भगवान का नाम आएगा। अजामिल को भी भगवान के नाम से तृप्ति नहीं मिली है। अजामिल का क्या हुआ, जब उसने नारायण नाम को पुकारा तो चार नारायण के शब्द बोलने से नारायण चार विष्णु दूत प्रकट हुए और तीन यमदूत प्रकट हुए और उन चारों का और तीनों का कन्वर्सेशन हुआ, ये तो पापी है। और उन्होंने क्या बोला, ये तो धर्मात्मा है, इसने भगवान के नामों का उच्चारण किया और उच्चारण करने के बाद ये मुक्त हो गया है। इस कन्वर्सेशन के बाद में उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसको जागृति हुई, उसको अवेकनिंग हुई, वो जाग गया और बोला मैंने इतना बुरा सपना देखा जिस सपने में मैंने अपनी मृत्यु देखी और देखा मेरे गलत कामों के कारण मैं ब्राह्मण होकर शास्त्रों का ज्ञाता होकर मैंने एक वेश्या का संग किया और मैंने क्या किया, अंत में नारायण बोला तो उस एक नाम से मेरा मुक्ति होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। तो अभी उसने अपने परिवार का त्याग किया, हरिद्वार जाकर 6 महीने तक लगातार अनन्य भजन किया। क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जब इस प्रकार से भजन किया तब उसको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। एक्चुअली तो चैंटिंग से ही वैकुंठ की प्राप्ति है। अभी हम, हमें पता नहीं अजामिल की तरह मौका हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, तो क्वेश्चन ऑफ डाउट वी शुड ट्राई फॉर द बेस्ट थिंग। ठीक है प्रभु जी, आरपी सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपका ही उत्तर मिल गया। और किसी का कोई प्रश्न है या हम समाप्त कर सकते हैं? यस प्रभु जी, खत्म कर सकते हैं। एक कुछ लिखा है यहाँ पर, मेरे लिए एक मैसेज आया है, नाउ टाइम फॉर अ ड्रामा। ठीक है, सो प्लीज ड्रामा तैयार है, आप लोग ड्रामा देख के जाइए। रामचरित्र के ऊपर बहुत सुंदर ड्रामा तैयार किया हमारे भक्तों ने, हम उनका वेलकम करेंगे हरी बोल बोल के 3 बार, हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
कैसा लगा आपको लेकर, और शास्त्रों में साहित्य के ऊपर यहाँ पर पूरा प्रचार किया जा रहा है। अभी हम लोग रिसेंटली एक और कुछ कोर्स शुरू करने वाले हैं।